देखते देखते कुछ दिन गुजर गए थे। नित्या दोबारा नहीं आई थी। वैसे तो मानव ने भी उसे यही कहा था, लेकिन अब उसे रोज उसका इंतजार रहता था। वो दिखाता नहीं था, लेकिन दिल ही दिल में वो भी उसे मिस कर रहा था और चाहता था कि वो आए। अनीता जी भी उसे याद किया करती थी और अब तो अक्सर ही उसका जिक्र छिड़ जाया करता था। कभी मानव टॉपिक बदल देता, कभी खुद बहाना बनाकर उठ जाता, तो कभी बस सुनता रहता। जॉब वो छोड़ चुका था तो अब पूरा टाइम कैफे में ही जाता था। जब जब वहां जाता तो उसे वो दिन याद आ जाता था जब नित्या उसके साथ वहां गई थी। उसका बाइक पर पीछे बैठना, घबराकर पीछे से उसे हक करना, गुस्सा, नाराजगी, वो शिकायत करती मासूम आंखें, सब उसे याद आता था। इन दिनों उसने गहराई से इस सिचुएशन के बारे में सोचा था और शायद डिसीजन भी ले चुका था, लेकिन नित्या का दोबारा न आना उसकी उलझन के साथ परेशानी भी बढ़ा रहा था। टेंशन में था और उसे नित्या की चिंता भी हो रही थी। खुद पर गुस्सा भी आता कि क्यों उस दिन उससे ठीक से बात नहीं की, नंबर तो ले लेता। पर अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं था सिवाय इंतजार के, और वो बड़ी ही बेसब्री से नित्या के आने का इंतजार कर रहा था। फिलहाल सिया बिजी थी तो इनाया और कायरव की जिंदगी में भी अभी शांति ही थी। मिसेज रायचंद ने अब कोशिश बंद कर दी थी। मिस्टर रायचंद कायरव के आगे फिलहाल बेबस थे क्योंकि पूरा बिजनेस इस वक्त वही संभाल रहा था। उनका एक गलत कदम उनके करोड़ों के नुकसान की वजह बन सकता था, इसलिए वो बहुत सोच समझ कर कुछ भी कर रहे थे और फिलहाल वो बस एक मौके की तलाश में थे। इनाया दिल लगाकर काम कर रही थी, सीख रही थी, कायरव के साथ टाइम भी स्पेंड करती थी, मानव से उसकी फोन पर बात हो जाती थी। इन दिनों का सबसे सही यूज मिस्टर शेरगिल ने किया था। उन्होंने मानव से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली थी और अब भी उनकी मानव पर नजर थी। उनके अलावा कोई और भी था जो मानव की जन्म कुंडली निकालने की कोशिश कर रहा था। आज का दिन भी रोज सा गुजरा। मानव ने आज बाकी सब काम फिनिश करवा लिया था। कल से पेंट शुरू होना था और उसके बाद फर्नीचर वगैरह आता। स्टाफ हायरिंग, लाइसेंसिंग और बाकी सारे काम कायरव संभाल रहा था। मेन्यू डिसाइड करना और इंटीरियर की जिम्मेदारी इनाया के कंधों पर थी। मानव रोज जैसे कैफे से घर जाने के लिए निकला। आज काम थोड़ा जल्दी हो गया था तो वो जल्दी ही घर जाने वाला था। अभी वो कुछ दूर ही पहुंचा था कि अचानक ही एक बूढ़ा आदमी जो बैसाखी स्टिक के सहारे चल रहा था उसकी बाइक के सामने हाथ हिलाने लगा। मानव ने तुरंत बाइक रोकी और हेलमेट का शीशा ऊपर किया। वो आदमी उसके थोड़ा पास आ गया। क्या हुआ काका, कुछ मदद चाहिए? बेटा, हमारी गाड़ी खराब हो गई है। ड्राइवर एक घंटे पहले मैकेनिक को बुलाने गया था, अभी तक नहीं लौटा। मैं आज अपना फोन भी साथ लाना भूल गया और शाम हो रही है। अगर वक्त पर घर नहीं पहुंचा तो सब परेशान हो जाएंगे। अगर तुम हमें छोड़ देते तो अच्छा रहता। हम पिछले 15 मिनट से गाड़ी रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज की दुनिया में किसी के पास किसी की मदद करने के लिए टाइम ही नहीं है। मानव ने पीछे देखा जहां एक चमचमाती कार खड़ी थी और फिर उस आदमी को देखा। ब्लैक पठानी कुर्ता, चेहरे पर रुआब के साथ सौम्यता और ताव देती मूछें, सर पर साफा बांधा हुआ था, पैरों में जुत्ती, लंबी कदकाठी, मजबूत शरीर, उम्र का शरीर पर बहुत कम असर हुआ था और उन्हें देखकर ही लग रहा था कि किसी अच्छे घर से हैं। शायद मजबूरी ही थी उनकी जो ऐसे सड़क पर खड़े लोगों से मदद मांग रहे थे। सब देखते हुए मानव की नज़र उनके खड़े होने के ढंग पर जाकर ठहर गए। कुछ गड़बड़ लगी और भौहें सिकुड़कर आपस में जुड़ गईं। काका, आप ठीक है ना? आपके पैर में कोई परेशानी है? अरे बेटा, इतनी देर खड़े खड़े घुटने में दर्द होने लगा है। उम्र हो गई है और अभी तुमसे पहले एक गाड़ी वाला आया था, उसे रोकने की कोशिश करने के लिए जा रहे थे तभी पत्थर से पैर लग गया, उसी वक्त से चलने में परेशानी हो रही है। कहीं चोट तो नहीं लगी? आप कहें तो पहले मैं देखूं। ज्यादा परेशानी होगी तो मैं आपको डॉक्टर को दिखा दूंगा और उसके बाद आपको आपके घर भी सुरक्षित छोड़ दूंगा। नहीं बेटा, डॉक्टर की जरूरत नहीं। इतनी छोटी मोटी चोट तो इंसान को चलते फिरते लगती ही रहती है। जवानी के दिनों में इतना फर्क नहीं पड़ता था, अब बुढ़ापा आ गया है, शरीर ढल गया है, इसलिए परेशानी बढ़ गई है। लेकिन तुम चिंता मत करो, हो सके तो मुझे घर पहुंचा दो। घर पहुंचूंगा तो फोन करके ड्राइवर से बात करूंगा, पता नहीं कहाँ रह गया है। उस आदमी के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। मानव ने कुछ पल सोचा, फिर झिझकते हुए बोला, काका मेरे पास तो बाइक है, पैर लटकाकर बैठने पर शायद आपकी परेशानी बढ़ जाए। मैं एक काम करता हूँ, आपके लिए कैब बुक कर देता हूँ, आप उससे आराम से घर चले जाइएगा। कैब की जरूरत नहीं बेटा, तुम ही छोड़ दो, चिंता मत करो, हम ठीक हैं। मानव को ये ठीक नहीं लग रहा था। उनके पैर में पहले ही परेशानी थी, अब पैर लटकाकर बैठना परेशानी बढ़ा सकता था, लेकिन वो काका नहीं माने तो मानव ने उन्हें अपने पीछे ही बिठा लिया और नॉर्मल स्पीड में बाइक चलाने लगा। जो जहां कहते वहां बाइक घुमा लेता। उन काका की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए मानव एक बड़े से गेट के सामने पहुंचा। वो पॉश एरिया था जहां नॉर्मल घर नहीं बल्कि बड़े बड़े बंगलों बने थे। उन्हीं में से एक बंगलों के सामने इस वक्त वो अपनी बाइक के साथ मौजूद था। पीछे बैठे आदमी को गार्ड ने इज्जत से सलाम किया और गेट खोल दिया। मानव की बाइक आगे बढ़ी और सीधे अंदर वाले गेट के सामने रुकी। अच्छा काका, अब मैं चलूं। वहां पहले से काफी गार्ड्स मौजूद थे, इसलिए मानव ने जाने की इजाजत मांगी कि उसकी हेल्प की अब उन्हें कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उस आदमी ने उसे रोक दिया। अरे नहीं बेटा, यहाँ तक आए हो, अंदर चलो। आज तुमने हमारी इतनी मदद की है, हम तुम्हें ऐसे हमारे घर के दरवाजे से नहीं जाने दे सकते। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने बस इंसानियत का फर्ज निभाया है। तुमने इंसानियत का फर्ज निभाया तो कुछ फर्ज तो हमारा भी बनता है। हम चाहते हैं कि तुम हमारे घर में आओ, थोड़ी देर हमारे साथ बैठो, हमें अच्छा लगेगा। चलो अंदर चलो, अब हमसे और खड़ा नहीं हुआ जा रहा। यहाँ तक लाए हो तो अंदर तक भी छोड़ दो, और वक्त हो तो हमारा पैर भी देख लेना, लगता है ज्यादा चोट लगी है। उनसे खड़ा नहीं हो रहा था ये मानव खुद देख रहा था, जैसे बार बार अंदर चलने कह रहे थे। मानव को मना करना भी ठीक नहीं लग रहा था, और उसकी वजह से खड़े होने में उन्हें जो तकलीफ हो रही थी वो तो और बुरा लग रहा था। मानव ने परेशान निगाहें आसपास घुमाई। सारे गार्ड सर झुकाकर अपनी जगह पर ऐसे खड़े थे जैसे इंसान नहीं स्टैचू हों। कोई भी काका की हेल्प के लिए नहीं आया। वो इतने प्यार से बुला रहे थे कि अब मानव भी मना नहीं कर सका। उसने बाइक स्टैंड पर लगाई और एक तरफ से उन्हें सहारा देते हुए धीरे धीरे अंदर लेकर जाने लगा। अंदर कदम रखते ही वो जरा चौंका। बाहर इतने गार्ड्स थे और अंदर कोई एक आदमी नजर नहीं आ रहा था। महल जैसा घर था लेकिन बिल्कुल सुनसान, सर्वेंट तक गायब थे। मानव को ये थोड़ा अजीब लगा। वो उन्हें संभालते हुए अंदर लाया और उन्हें आराम से सोफे पर बिठा दिया। मैं देख लूं आपका पैर, मानव ने झिझकते हुए पूछा। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए अपनी पलकें झपका दी। मानव ने उनकी जुत्ती खोली। दाएं पैर के अंगूठे में शायद चोट लगी थी। अंगूठा लाल था और हल्की सूजन भी थी। काका, आपका अंगूठा सूज गया है, इसलिए चलने में तकलीफ हो रही होगी। आप डॉक्टर को दिखा लीजिए, वरना गर्म पानी से सिकाई करके दवाई लगाइए, उससे भी ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं यही कहूंगा कि एक बार डॉक्टर को दिखा ही लीजिए। बाहर से ठीक लग रहा है लेकिन परेशानी अंदर की भी हो सकती है, और रिस्क लेना सही नहीं होगा। बस बेटा, आपने बोला तो डॉक्टर को भी दिखा लेंगे, तुम आओ यहाँ बैठो हमारे साथ। काका ने अपने बगल की खाली जगह की तरफ इशारा किया और बुलंद आवाज वहां गूंजी।
कमलेश, ओ कमलेश, कहाँ चला गया? आवाज सुनकर एक आदमी दौड़ता हुआ वहां आया। उम्र कम से कम मानव से तो ज्यादा ही थी, लेकिन काका से कम थी, काफी कम। कुछ बाल सफेद भी हो गए थे और देखकर लग रहा था जैसे सालों से यही काम करते हों। जी साहब, मेहमान घर आए हैं, थोड़ा चाय पानी का इंतजाम कर और बता दो हमारी गुड़िया कहाँ है, कहीं नजर नहीं आ रही। साहब, छोटी मेम साहब तो अपने कमरे में हैं, तीन चार बार नीचे आकर आपके लिए पूछ चुकी हैं, आप कहें तो उन्हें बता दूं कि आप आ गए हैं। नहीं, तुम जाओ, जाकर चाय पानी का इंतजाम करो और हमारा फोन तो मंगवाओ, एक जरूरी फोन करना है। जी अच्छा। कमलेश ने तुरंत सर हिलाया, वहां से चला गया। कुछ मिनटों में उनका फोन भी आ गया। मानव के लिए बहुत ऑकवर्ड सा हो गया था, उसने मना करना चाहा लेकिन काका ने उसकी एक नहीं सुनी। अब बेचारा सर झुकाए वहां परेशान सा बैठा था और सोच रहा था कि कैसे जल्दी से जल्दी यहां से निकले। तभी अचानक एक जानी पहचानी सी आवाज उसके कानों में पड़ी और दिलो दिमाग एकदम से अलर्ट हो गया। उसने तुरंत आवाज की दिशा में निगाहें घुमाई और अगले ही पल उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। टू बी कंटिन्यूड।